फ्रांस में कृषि की छोटी जोतें 16वीं 17वीं शताब्दियों में बनी रहीं। कुछ हद तक यह कम्यून जीवन पद्धति से संभव हो सका। ग्राम समुदाय ने धनी किसानों को ऊसर या परती भूमि पर पेड़ लगाने, आसपास की जमीन पर कब्जा करने, पशुपालन को खेती के साथ मिलाने तथा बेहतर कृषि तरीके अपनाने से रोका। यदि उन्हें रोका न गया होता तो उन गरीब और छोटे किसानों की गुजर मुश्किल हो गई होती, जो अपने खेतों की थोड़ी सी उपज के अलावा साझेदारी के चरागाहों तथा खुले खेतों की उपज पर निर्भर करते थे। इस तरह फ्रांस में ग्राम कम्यूनों ने खेती व पशुपालन में किसी एक व्यक्ति के बड़े हो जाने पर सफलतापूर्वक अंकुश लगा दिया। कुल मिलाकर खेती अनाज आधारित ही रही और खेत इधर उधर खुले में पंक्तियों के रूप में बिखरे रहे। इस प्रकार भूमि की उर्वरा शक्ति खत्म करने वाले कृषि उपाय जारी रहे। ग्राम कम्यून ने बाहरी लोगों को जमीन जब्त करने से भी रोका। 16वीं शताब्दी में जब गोश्त और ऊन के दाम अनाज से अधिक थे, तब जमींदारों के कुछ वर्गों, शाही दरबारियों और व्यापारियों में से ने खाली पड़ी जमीनों पर कब्जा करने और उसे अपनी जमीन में मिलाने की कोशिश की, ताकि उस पर पशुपालन किया जा सके। परंतु ग्राम कम्यूनों ने इन प्रयासों का साहसपूर्वक विरोध किया। चरागाहों के इर्द गिर्द खड़ी कर दी गई, बाड़ तोड़ डाली गई और चरागाहों को अलग करने वाली खाइयां पाट दी गई। बाहर के ऐसे उपद्रवी तत्वों के विरुद्ध गांव के अस्थायित्व को बनाए रखने में निरंकुश राजतंत्र की नीतियों में भी बड़ी मदद मिली। विशेषतः 16वीं शताब्दी में लुई 13वें के शासनकाल में सरकारी अफसर इसे रोकने में बड़े सतर्क रहे। इन अफसरों में सबसे महत्वपूर्ण इंटेंडेंट रहे, जो राज्य के प्रतिनिधि बनकर देहाती क्षेत्र में जाते थे और समृद्ध जमींदारों को दूसरों की या गांव की जमीन पर कब्जा करने से तथा किराया बढ़ाने से रोकते थे। 30 वर्षीय युद्ध में किसानों की संपत्ति के विनाश के बाद छोटे किसानों की जमीन सुरक्षित रखने तथा ग्राम संगठन को बनाए रखने में इन इंटेंडेंटों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण रही। इस तरह राज्य के संरक्षक के रूप में इन इंटेंडेंटों ने अपनी भूमिका को भी किसानों की नज़र में बनाए रखा और पर्याप्त संख्या में करदाता परिवारों को भी बनाए रखा। चूंकि फ्रांस में राजशाही के लोग कर मुक्त थे, अतएव राज्य किसानों से प्राप्त करों पर काफ़ी हद तक निर्भर था। 17वीं शताब्दी के आरंभ में ही राजतंत्र उसकी अदालतों, विशाल सेना, अफसरों की लंबी चौड़ी फौज तथा शाही शानो शौकत को बनाए रखने के लिए कुछ नए कर जैसे चूल्हा कर, नमक कर आदि लगाए गए थे। इस प्रकार फ्रांस में कृषि की छोटी जोतों, छोटे उत्पादकों को समृद्ध जमींदारों और व्यापारियों से बचाकर राजशाही ने उन्हें टूटने से बचाया। किंतु उनमें स्वयं आर्थिक विकास के लिए दम नहीं था, क्योंकि किसानों के पास पैसा जमा ही नहीं हो सका। उन्हें राज्य, चर्च और सामंती जागीरदारों को भारी कर देने होते थे। गोबर्ट के अनुमान लगाया है कि एक औसत खाते पीते किसान को अपनी गेहूं की उपज का एक तिहाई हिस्सा और यदि मोटा अनाज हो तो और भी ज़्यादा हिस्सा उक्त करों के रूप में देना होता था। यही फ्रांस में 17वीं शताब्दी की कृषि की विशेषता थी। यद्यपि कुछ और प्रवृत्तियां भी दिखाई दे रही थी, परंतु वे अभी इतनी प्रमुख नहीं थी। 16वीं शताब्दी के अंत से लेकर 18वीं शती के प्रारंभ तक कृषि के क्षेत्र में आए संकट चक्र तथा मूल्यों में उतार चढ़ाव से छोटी जोतों के किसानों की आत्मनिर्भरता खत्म हो गई तथा उन्हें अपने जीविका के लिए साथ में कोई मजदूरी का काम करना जरूरी हो गया। गोबर्ट ने लिखा है कि फ्रांस के कुछ भागों में समृद्ध किसानों और व्यापारियों के पास छोटे किसानों के लिए ऐसा काम था, इन छोटे किसानों को बीज, हल या घोड़ा उधार देकर बदले में धनी किसान उनसे अपने खेतों में मजदूरी करवाकर अपनी भूमि और उपज बढ़ा रहे थे। यही नहीं, कमी वाले दिनों में जब अनाज के दाम 3-4 गुने बढ़ जाते थे, धनी किसान जिनके पास अपनी ज़रूरत से बहुत ज़्यादा अनाज होता था, खूब अच्छा मुनाफा कमाते थे। फ्रांस के कुछ भागों में इन दो तरह के किसानों के बीच का सामाजिक अंतर स्पष्ट दिखाई देने लगा था। मानो ब्रियर के पास कोई जमीन नहीं थी और वह समृद्ध किसान के खेतों पर काम करता था। लेबोरियर शब्द मध्यवर्गीय और धनी किसान के अंतर को स्पष्ट करता था। गोबर्ट का कहना है कि ऐसे समृद्ध किसान हर गांव में गिने चुने ही थे, पर आर्थिक दृष्टि से वे सबसे शक्तिशाली थे। इसलिए जो काल बहुसंख्यक लोगों के लिए आर्थिक संकट का काल होता था, वही कुछ के लिए बेशुमार धन जमा करने का काल होता था, और जिससे हर एक का आर्थिक जीवन नए सिरे से तय हो रहा था। स्पेन में, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, राज्य की नीतियां भेड़ पालक अभिजात व जमींदार वर्ग के पक्ष में अनाज उत्पादक किसानों को निरुत्साहित करने वाली थी। 17वीं शताब्दी में स्पेन के राजा ने अभिजात भेड़ पालकों को अपना रेवड़ और बड़ा करने के लिए और कृषि योग्य जमीनों पर कब्जा करने की अनुमति दी। इसके साथ ही अनाजों के मूल्यों में आई गिरावट से तो किसानों की रीढ़ ही टूट गई। वे या तो आम तौर पर भिखारी बन गए अथवा सेना में भर्ती हो गए। 18वीं शताब्दी के अंत तक जमीन का बड़ा भाग, जिस पर पहले खेती होती थी, अब खाली पड़ा रहा। इटली में उत्तर के नगरों के शिल्प और व्यापार का पतन होने से व्यापारियों ने अपना धन जमीन खरीदने में लगाया। 16वीं शताब्दी के अंत तक वेनिस के समृद्ध लोगों का केवल 11% कृषि भूमि पर कब्जा था, परंतु 1740 तक उनके कब्जे में देश की 20% से अधिक कृषि भूमि आ गई थी। यह किसानों की दयनीय स्थिति के कारण ही संभव हुआ। समृद्ध व्यापारियों ने इन किसानों की मजबूरी, मूल्यों की अस्थिरता का लाभ उठाकर उनकी जमीन उनसे खरीद ली और फिर छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर उन्हीं को पट्टे पर व बटाई पर दे दी। इटली के सभी नगरों के इर्द गिर्द छोटे छोटे साधनहीन किसानों की जोतों पर कम खेती होती रही। इस प्रकार स्पेन और इटली दोनों देशों में किसानों की उपज गैर किसान लोगों, सामंती वर्ग ने हथिया ली। ये लोग स्पेन में राजशाही के समर्थन से और इटली में नगर प्रशासन के नियंत्रण से छोटे किसानों की जमीनों के मालिक बन बैठे। पूर्वी यूरोप में हम पहले ही देख चुके हैं कि धनी जमींदारों ने डंडे के बल पर छोटे किसानों की जमीनें हथिया ली। यूरोप के इस भाग के देशों के राजतंत्र किसानों को संरक्षण देने अथवा उनकी उपज पर अपना अधिकार जताने में असमर्थ थे। फलस्वरूप समृद्ध जमींदार और भी निरंकुश हो गए थे। इन सामंतों ने किसानों की जमीनों पर कब्जा करके उन्हें अपने अपने बड़े फार्मों, डेमोनों पर कड़ी मेहनत करने के लिए विवश कर दिया। परंतु चूंकि जमींदार भी खेती की नई तकनीकें अपनाने को उत्सुक नहीं थे, इसलिए 17वीं शताब्दी में जब मंदी का दौर आया, तब इन जमींदारों ने अपनी आय बढ़ाने के लिए छोटे किसानों पर और जुल्म ढाने शुरू कर दिए। यह नीति वेनरलेगान कही जाती थी। सिर्फ यानी बंधुआ किसानों, कृषि दासों से मजदूरी और कड़ाई से कराई जाने लगी तथा शराब, नमक, आटा पीसने, रोटी बनाने आदि पर और अधिक कर लगाकर उन पर सामंती शुल्क बढ़ा दिए गए। पश्चिमी यूरोप में व्यापारियों की जिस धन संपदा ने कृषि विकास में भूमिका अदा की, उसे यह मौका न मिला। यह कारनामा भी सामंतों का था, जिन्होंने 17वीं शताब्दी में अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए गेहूं का व्यापार अपने हाथ में ले लिया था। इसलिए पूर्वी यूरोप में न तो किसानों में पूंजीवादी बुर्जुआ प्रवृत्ति पनप सकी और न ही व्यापारी वर्ग में। 19वीं सदी तक यही हालत रही। जब तक जमींदार राजनीतिक सत्ता में थे, उनको नई तकनीकों की परवाह नहीं थी। अपनी आमदनी व उपज बढ़ाने के बजाय वे सरफों के हिस्सों में से कुछ हिस्सा हड़प सकते थे।